समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पब्लिक स्पीक के साथ। आज मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज हम जो विषय आपके साथ विचार विमर्श के लिए लेकर आए हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं देश के एक महान विचारक के शब्द या कहें कि उनके विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं आपके सामने। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी, आप सही समझ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था और 12 जनवरी को उनका जन्मदिन है, देश उनको याद करेगा। हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं और हमारा जो आज का पब्लिक स्पीक है ये भी हमारे युवाओं को समर्पित करते हैं, इसलिए हमने विषय चुना है देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी। अब ये भागीदारी कैसे हो, क्या किया जा सकता है, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने को व्यक्तिगत तौर पर या फिर सामूहिक तौर पर मिलकर काम करके हम राष्ट्र की प्रगति में कैसे सहायक हो सकते हैं, इस तरह से इससे जुड़े जो भी सवाल या सुझाव आपके पास हो हमसे जरूर बात करें। स्टूडियो में आज हमने दो विशेषज्ञ मेहमानों को आमंत्रित किया है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के डीजी मेजर जनरल दिलावर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में और फोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं स्टूडियो की। आपका एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कॉल कर सकते हैं 1800-11-5767। दूसरा नंबर है 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज अ बायलिंगुअल प्रोग्राम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। सरकार की कौशल विकास और हर क्षेत्र में युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी का स्वयं ये मानना है कि युवाओं को सशक्त करने से राष्ट्र की नींव मजबूत होगी। और जबकि बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में युवाओं की है, तो एक सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा और व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं रखी हैं। पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, सलमान हुसैन। सलमान साहब बोलिए।
जी नमस्कार मैम।
नमस्कार
जी। देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो राजनेता हैं वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। अगर ये आलोचना ना करकर जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, स्नातक हमारा स्नातक के विद्यार्थी तरीके से घूम रहे बेरोजगार हो, लेकिन ये फोकस उन युवा पीढ़ी पर थी तो शायद जो विश्वास है वो शायद संभव हो पाए आने वाली भविष्य।
जी ठीक बात कह रहे हैं आप उपासनी जी। वो देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की जो एक विचारधारा है उपासना जी, उससे उसको सिर्फ वो समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण जो है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, जबकि राजनीति राष्ट्र निर्माण नहीं है, उससे अलावा भी बहुत चीज।
देखिए सलमान भाई, ये नेता तो अपना काम करते रहेंगे और जो विपक्ष में है वो बोलेंगे, जो सरकार में है उसका जवाब देंगे, लेकिन जो युवा है, आप जैसे नौजवान लोग हैं, उनके लिए काम है कि वो जो काम कर रहे हैं आप जो काम करते हैं, पता नहीं आप क्या काम करते हैं, लेकिन आप अपना काम अगर अच्छा करते हैं तो ये मानकर चलिए कि नेताओं को आपकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और वो जो आपस में झगड़ते हैं, जब वो देखेंगे कि आज देखिए नौजवान ही इस देश की ताकत है, सबसे ज्यादा 2/3 से ज्यादा नौजवान है अपने देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान हैं। अगर नौजवान ठान ले तो नेता चुप हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, अपना काम ठीक से करिए।
शिक्षा का क्षेत्र है, सेना है, कृषि है और भी बहुत सारे वो जो क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं जहां युवा अपनी ताकत अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। जनरल दिलावर सिंह, मैं आपसे इस बारे में जानकारी चाहूंगी।
देखिए आज का युवा जो है पहले के युवा से कहीं ज्यादा जागरूक है, कहीं ज्यादा अलर्ट है, कहीं ज्यादा अवेयर है। और सब युवा अपने अपने जो सिलेक्टेड फील्ड्स हैं, जो उनके चोजन फील्ड्स हैं, डिजायर है उसकी, उसके मुताबिक वो सब काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जरूरत है सिर्फ उनको सही मार्गदर्शन की या सही सूचना प्राप्ति के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई है उसके कारण इस सूचना के प्रसार और प्रचार के अंदर जो है काफी तेजी आई है। और कोई भी सूचना एक बटन दबाते ही अपने इंटरनेट के ऊपर जाकर के जो हमारे युवा हैं ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, खास तौर पे जो सरकार की स्कीम्स हैं युवाओं की भलाई के लिए, वो उनको उपलब्ध हैं। और उसके अंदर
बहुत दूर से पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करें। समस्तीपुर बिहार से जय कैलाश हैं हमारे साथ फोन पर। जी बोलिए जय कैलाश जी।
कहना चाह रहे थे कि ये इसमें मेरे लड़के भी एक है जो डिप्रेशन का शिकार हो गया। मैंने उसके साथ एक तरह के झटका लगा था। मैंने नौकरी में नीतीश जी बहाली किए थे सांख्यिकी विभाग में और पैनल रद्द कर दिए थे महीने काम करवा कर। तो ये ऐसे युवा जो है सो 72,000 बिहार में।
अच्छा तो ये
तो इसको तो लगता है कि सब कुछ झूठा है।
लेकिन तो लेकिन जी जय कैलाश जी, हम अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार तो अपने व्यवसाय अपने कौशल की बात कर रही है, तो फिर ये स्थिति क्यों बन रही है? जैसे कह रहे हैं कि नौकरी नहीं थी, वो पैनल जो था वो खत्म कर दिया तो वो डिप्रेशन में आ गए।
मैं आपकी बात समझ सकता हूं और मैं आपकी व्यथा भी समझ सकता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सी बार क्या होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कोई पैनल बनता है और उसको सरकारी जो अमला है, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसको किसी तरीके को प्रोसीजर को फॉलो करके बनाते हैं और बनाने के बाद किसी प्रकार की शिकायत आ जाती है बीच में। कुछ लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं पैनल पे वो शिकायत कर देते हैं
या कहीं कोई गड़बड़ी पता लगती है।
हाँ जी, तो जब उस शिकायत का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में हम जांच करते हैं और यदि ये पाया जाता है कि इस सिलेक्शन में या इस पैनल के बनाने में गलती हुई है तो मजबूरन फिर सरकार को उस पैनल को रद्द करना पड़ता है, क्योंकि सरकार को सही काम ही करना है। उसमें अगर दो भी जगह, अगर मान लीजिए 40,000 लोग लिए गए और 40 में दो पे भी गलती पाई गई तो फिर उस पैनल को रद्द करने की बात बन जाती, क्योंकि फिर उसमें ये पता नहीं लगता है कि कितने और केसेस में भी इसी तरह की गलती हुई होगी। तो शायद इस तरह का कोई कारण बना हो जिसके कारण कि हमारे बच्चे को व्यथा हुई हो। मैं आपको बता सकता हूं आपका बच्चा जो है सक्षम है और जरूर जल्दी से जल्दी कोई न कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलेगी यदि प्रयास करेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी।
निशा है दिल्ली से हमारी श्रोता। हेलो निशा।
हेलो
नमस्कार।
नमस्कार। और मैं आप लोगों को पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस विषय को सुनने के लिए, खुद युवा हूं तो बहुत
जी शुक्रिया।
मैम सर, मैं इस विषय में अपना एक नहीं कई सुझाव है वैसे, लेकिन जो सुझाव मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा है आर्थिक रूप से, क्योंकि ये हमेशा हमारे पास एक चुनौती है कि हम बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो सर मैम, मुझे ये हमेशा लगता है कि हम बेरोजगारी जैसे विषय को इतना हवा क्यों बना रहे हैं। जैसे हमें आज एग्रीकल्चर में शर्म है करने में, युवा इसकी तरह कम मोटिवेट होते हैं और अगर युवा अपनी जानकारी का, अपने ज्ञान को उपयोग टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में लगा दे, एग्रोटेक हमारा एक विषय बन जाए तो सर ये बड़ी बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक शर्म छोड़नी होगी। दूसरा जो मेरा कंसर्न है वो है सर युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण का, जो कि सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अगर हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमें शिष्टता नहीं है तो सर राष्ट्र निर्माण का और विश्वगुरु जैसी बातें करना बेमानी लगती है मुझे। तो मैं आप लोगों से मेरा एक प्रश्न भी रहेगा कि आप इसमें अपना क्या विचार देना चाहेंगे कि हम ये चारित्रिक का, हमारी शिष्टता का, हमारे आचरण का, ये कैसे हम अपने युवाओं में डेवलप कर पाए। सर बहुत ईमानदारी से कहूंगी, मुझे इसका बहुत अभाव महसूस होता है युवाओं में।
निशा जी आपकी बातें सुनी, बहुत ही अच्छी बातें आपने की हैं, जो कि मैं अपने दोनों विशेषज्ञों से उनकी टिप्पणी मांगूंगी आपके इस सवाल पर।
बहुत ही ब्रीफ टिप्पणी निशा जी हम देना चाहेंगे। दिल की बात और मर्मस्पर्शी बात आपने की है और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि दोनों चीजें सही हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंदर एक बेसिक थीम पे काम करते हैं जिसका हम बोलते हैं नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा हो जिससे कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएं। अगर ऐसा करना है तो हर काम में हमें सोचना पड़ेगा कि नेशन को फर्स्ट कैसे बनाना है। और साथ ही साथ मैंने कहा कैरेक्टर मस्ट, यानी कि जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा बाकी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा गया, आपने सुना है कई बार, कि यदि पैसे गुम हो गए या नुकसान हुआ तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर सेहत का नुकसान हुआ तो कुछ नुकसान हुआ, लेकिन यदि चरित्र का नुकसान हुआ तो पूरा ही नुकसान हो गया। यानी कि लाइफ में शुरू से हमारे बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि चरित्र सबसे ही इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद।
उपासना जी, जो इन्होंने कृषि की बात कही, जो हम पहले सवाल पर आते हैं, उसमें कृषि में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां अगर आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं तो आप अपनी जमीन पर खेती कर सकते हैं, उसमें सरकार आपको सहायता देगी।
देखिए, निशा जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और निशा जी को संभवतः जानकारी भी होगी कि बहुत सारे युवा जो इंजीनियरिंग करके निकले हैं और अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं, एग्रोटेक में बहुत से नए स्टार्टअप शुरू किए हैं युवाओं ने, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो किसान खेत में काम करता है तो उसको उपज ठीक मिले, उपज का दाम ठीक मिले, उसकी उपज की ठीक ठाक संरक्षा हो जाए और उसकी उपज समय पर बाजार में पहुंच जाए और उसकी उपज का मार्केट में ठीक से इस्तेमाल हो जाए। अगर टमाटर का इस्तेमाल सिर्फ टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए हो रहा है तो और क्या इस्तेमाल हो सकता है, ताकि वो किसान के लिए भी लाभप्रद हो और वो जो स्टार्टअप चला रहा है उसमें भी उसका भी उसमें कोई
और
उसको मिले
अच्छे दाम के लिए ई मंडी भी शुरू।
ई मंडी भी, तो मैं मानता हूं कि एग्रोटेक में बहुत से युवाओं का रुझान हुआ है और इस समय सरकार भी एग्रोटेक में स्टार्टअप खोलने वालों को मदद दे रही है। स्टार्टअप इंडिया के तहत भी इस तरह की योजना है, बहुत सारा लोन भी अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उद्योग समूह भी ऐसे युवाओं को और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एग्रोटेक में जाएं, और कुछ वर्ष में आप देखेंगे कि एग्रोटेक में काम करने वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अनेकों युवा आपको दिखाई देंगे।
उपासना जी, इसकी जानकारी के लिए कौशल विकास और कृषि मंत्रालय की वेबसाइट भी ये चेक कर सकते हैं।
निश्चित है
जी। जोधपुर से हमारे अगले श्रोता हैं चेतन प्रकाश। हेलो चेतन जी।
जी नमस्कार मैम।
हाँ नमस्कार, बोलिए।
अभी हमें मैम ये पूछ रहा हूँ कि हमारे जोधपुर जैसलमेर ये बाद सीमावर्त के एरिया में इसमें युवाओं ने आईटीआई और डिप्लोमा वगैरह बहुत किया, तो उसके लिए हमें क्या मतलब संभावनाएं हैं आगे भविष्य में?
क्या संभावनाएं?
देखिए, कौशल विकास की जो योजनाएं चल रही हैं स्किल इंडिया के तहत, जो आईआईटी को सरकार ने, जो आईआईटी पुरानी चलती हैं उनको एक तरह से उसका पुनरुद्धार किया है, और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहुत सारी एजेंसियों को सरकार ने चिन्हित किया है और वो स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं चला रहे हैं। जो आईआईटी करके लोग युवा निकले हैं वो अपने दक्षता को बढ़ाने के लिए इन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें उनको बहुत अपनी जेब से बहुत पैसा नहीं लगता है, महिलाओं को तो सारी छूट है, बल्कि आने जाने के लिए भी, और जो लड़कियां हैं उनको भी सरकार दक्षता प्राप्त करने के लिए पैसा देती है। तो मेरा मानना है कि अपने स्किल को जरूर उनको डेवलप करना चाहिए, सिर्फ हमने और आईटीआई का काम कर लिया तो काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दक्षता केंद्र पर आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल परंपरागत कारीगर भी आकर वो ट्रेनिंग देते हैं, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, विशेषज्ञ यानी गांव देहात में काम करने वाला भले ही वो अनपढ़ है वो भी आता है, वो भी ट्रेन करता है।
इसमें लोकल जो कलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए भी विविध उपाय किए गए हैं जी।
हाँ निश्चित रूप से, और युवाओं को जरूर उसका लाभ उठाना चाहिए, और जिन युवाओं को इसकी जानकारी नहीं है वो स्किल इंडिया के वेबसाइट पर जाएं और देखें कि उनके आसपास ऐसा कौन से सेंटर चल रहे हैं जहां पर वो जिस ट्रेड में उन्होंने आईटीआई किया है उस ट्रेड में उनके ट्रेड को और अच्छा समुन्नत बना सकते हैं।
और कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर या जो हाथ के हुनर वाली चीज है उनका प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू किया जा सकता है। युद्धवीर है हमारे अगले श्रोता दिल्ली से। हेलो
नमस्कार।
नमस्कार जी।
मैं ये जानना चाह रहा था जो स्कीम, ये मुद्रा योजना की जो स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, इसमें क्या है कि बैंक वाले बहुत आनाकानी करते हैं। मैं एक गांव देहात का रहने वाला हूँ, एग्रीकल्चर से संबंधित हूँ मैं, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं उसका मुद्रा लोन लेके और मैं कुछ अपना रोजगार कर सकूँ, लेकिन वो कई बार गया उनके पास लेकिन वो हर बार आनाकानी करके कि ये नहीं है वो नहीं है, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, ऐसे करके काफी लोगों को मतलब लटका रहे हैं।
ये कहाँ पर आपने पूछा, कौन से स्टेट की बात है?
ये यूपी स्टेट की, मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
अच्छा,
देखिए मुद्रा योजना में तीन तरह के वो लोन देते हैं। एक शिशु जिसने 50,000 तक का, आप शुरू करने के लिए 50,000 तक का, लेकिन इसमें आपको वो सारी जो केवाईसी की जरूरतें हैं वो पूरी करनी होती है, और इसके अतिरिक्त आप जो काम करना चाहते हैं उसका जो प्रोफार्मा बना हुआ है उस प्रोफार्मा में उस काम का ठीक से विवरण उनको दाखिल करना पड़ता है कि आप ये काम करने वाले हैं और इस तरह से करने वाले हैं। और अगर उसके बाद भी बैंक आपको आनाकानी करता है, लौटाता है, तो पहले आप उस बैंक के रीजनल ऑफिस में उनकी शिकायत अपनी दर्ज कराएं कि मैंने मुद्रा योजना में और अप्लाई किया है लेकिन मुझे जो लोन है वो नहीं मिल रहा है। अगर उसमें नहीं होता है तो आप उनके सेंट्रल ऑफिस को भी उसकी कॉपी भेज दें, और अगर आपको नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी तो सबके स्वागत और सबकी शिकायतें लेते हैं, आप सीधे पीएमओ में भी ये बात कह सकते हैं। प्रधानमंत्री का अपना नरेंद्र मोदी ऐप भी है अपने मोबाइल पे, आप डाउनलोड कर
डायरेक्ट अपनी शिकायत
डायरेक्ट डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी।
शांति से पहले उनसे ये पूछें कि कहां पर आपका काम अटक रहा है, कौन सी चीज है जो उसमें पूरी नहीं है। मऊ उत्तर प्रदेश से हमारे अगले श्रोता हैं नसीबुर रहमान। हेलो नसीबुर रहमान जी।
हाँ आदाब मैम।
हाँ हाँ आदाब बोलिए
जी। जी मैं ये कह रहा हूँ हमारे जवान के अंदर ये काबिलियती सलाहित पाई जाती है लेकिन वो बेचारे घर से और पैसे से मजबूर होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो स्कीमें आती हैं बड़े बड़े नेता उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। ऐसा क्या किया जाए जैसे हमारे यूरोप इतना आगे है, ऐसा कौन सा काम किया जाए ताकि हमारे इंडिया और हमारे देश के नौजवान आगे बढ़े।
जी बहुत सही बात आपने कही, लेकिन
जी देखिए कि आपकी बात सही है कि कई बार स्कीमें नीचे तक नहीं पहुंचती हैं। उसके लिए जो सूचना टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ है उसके माध्यम से बहुत जल्दी आईटी से इंटरनेट से आप लोग अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं।
अच्छा मान लीजिए जैसे ये मऊ में रहते हैं या कोई और भी दूरदराज का इलाका है, तो ये तुरंत कहां जाएं और कहां से पता लगे कि भाई मेरे को कृषि के लिए कितना लोन मिलेगा, कितना।
मैं बता रहा हूं जी, उसके साथ साथ सरकार ने सीएससी के जो है बूथ्स तकरीबन गांव-गांव तक पहुंचा दिए। सेंट्रल सर्विस स्कीम्स के जो है कंप्यूटर के बूथ हैं जो पहुंच गए, जिनके माध्यम से चाहे आधार बनाना है बाकी सूचनाएं उनको मिल सकती हैं
जी हाँ।
और गांव-गांव तक पहुंच गए, तकरीबन सब जगह बन गए हैं। और यदि फिर भी किसी कारण से किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है
जी,
वो उसके दफ्तर हरेक जिले में है।
अच्छा।
और हमारे जो युवा वॉलंटियर हैं वो हर एक ब्लॉक में दो हैं, और करीब करीब जो है हमारे युवा क्लब्स भी जो हैं काफी गांव में हैं।
चलिए मैं ये आपसे जानकारी लूंगी कि कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है। हमारे एक श्रोता हैं चंपावत उत्तराखंड से प्रदीप चंद्र। हेलो प्रदीप जी।
हेलो मैम नमस्ते। मेरा आपको और एक्सपर्ट को नमस्कार।
जी नमस्कार।
मैम मेरा सवाल ये है कि हमारा देश इतने बड़ी आबादी का देश है, इसमें हमारा देश जो है बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को देता है जो काफी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, और बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं, कुछ ही अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि अपने काम के प्रति इतना रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके काम पर नेताओं की बहुत ज्यादा अड़ंगेबाजी सामने आती है जो कि अब
हम युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं देश के निर्माण के लिए।
मैम युवा अपना बहुत सारा योगदान देते हैं तो कहीं ना कहीं नेता लोग भी इसमें अहम अपना रोल निभाते हैं कि उनको अच्छा काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं,
प्रोत्साहन
होते हैं कहीं ना, इतने सारे क्राइम होते हैं हमारे देश में तो कहीं ना कहीं उनके पीछे नेताओं का हाथ जरूर होता है। अभी कितनी हाल ही देश में कितनी घटनाएं हुई हैं।
नहीं मैं आपसे पूरी तरह से मत नहीं हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, वो मूल जो विषय है मूल विषय के आसपास आप नहीं पहुंच रहे हैं तो इसलिए उपासना जी कुछ कहना चाहेंगे।
देखिए नेताओं को छोड़िए ना, आप अपनी बात देखिए ना कि आप अगर युवा हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपको कोई दक्षता हासिल करनी है स्किल हासिल करना है तो वो क्या कर रहे हैं। देखिए युवाओं की ताकत बहुत ज्यादा है और युवा अपना जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप कृषि में खेती का काम कर रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए।
या ये सोचिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो सभी कर लेते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, हम देश की प्रगति में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक मेजर जनरल दिलावर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। हमारे दो नंबर हैं, एक टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767, दूसरा नंबर है 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011011 जरूर शामिल करें। रमाशंकर वाजपेयी हैं अगले श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से। जी रमाशंकर जी बोलिए।
मैं ये कहता था कि चरित्र विहीन युवा देश की प्रगति में क्या जो है सहयोग करेंगे।
ये शायद इनका थोड़ा सा आक्रोश झलक रहा है।
आपकी बात ठीक है, पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है आज कुछ देर पहले। आपकी चरित्र तो बहुत जरूरी है और उसके लिए जो है चाहे वो घर में माता पिता हैं, चाहे वो अपने शिक्षक हैं और चाहे वो अपने घर में बड़े हैं या समाज में बड़े हैं, वो सब एक अपने युवाओं को हेल्प करें, मदद करें ताकि चरित्र का सशक्तिकरण हो सके।
दिलावर सिंह जी, हम बात कर रहे थे कि नेहरू युवा केंद्र से जुड़कर युवा देश की प्रगति में कैसे योगदान कर सकते हैं, कैसे जुड़े आपसे जो जुड़ना चाहते हैं।
हमारे साथ जुड़ना बहुत ही आसान है। हमारे यहाँ पे जो काम हम लोग करते हैं वो युवा क्लब्स के माध्यम से करते हैं और युवा क्लब बनाना सबसे आसान है। कोई भी 7 बच्चे मिलकर के युवा क्लब अपना बना सकते हैं।
अच्छा,
15 साल की आयु से लेकर 29 वर्ष की आयु तक के कोई भी 7 बच्चे मिलकर के अपने क्लब को रजिस्टर करा सकते हैं, हमारे साथ एफिलिएट कर सकते हैं। हमारे साथ एफिलिएशन ऑनलाइन भी हो सकता है और अगर बिना ऑनलाइन करना है तो हमारे हर एक जिले के अंदर जो युवा समन्वयक का दफ्तर है उसमें जाकर के भी करा सकते हैं। और एक बार वो जुड़ गए तो उसके बाद चाहे युवा नेतृत्व की ट्रेनिंग हो या क्लब बनाने के बारे में बातचीत हो या स्किल डेवलपमेंट हो या खेल के माध्यम से आगे जाना हो, इस तरह के अनेक जो कार्यक्रम है हमारे उनके माध्यम से अपने स्वयं की सशक्तिकरण कर सकते हैं, अपने समाज के लिए जो है काम कर सकते हैं और देश में अपना योगदान दे सकते हैं।
बहुत सुंदर बात। कोडरमा झारखंड उत्तर झारखंड से हमारे एक श्रोता हैं प्रदीप यादव, कोडरमा से झारखंड से। जी बोलिए प्रदीप यादव जी, बोलिए।
नमस्कार सर।
नमस्कार, बोलिए
सर। आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सर सर बहुत सारी शिकायतें दर्ज करते हैं सर, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता है सर।
अच्छा,
कहाँ दर्ज करते हैं प्रदीप जी शिकायतें आप? हेलो प्रदीप जी,
कट गया फोन, कट गया।
कोई बात नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है न्यू इंडिया की बात की गई है और उसके अंदर जो है जो करप्शन फ्री इंडिया की बात की गई है और उसके प्रति जो है हर एक व्यक्ति जवाबदेह जो भी सरकार के अंदर है, और यदि आपने कोई अपनी शिकायत नहीं दर्ज की है उसका अगर समाधान नहीं हुआ है तो जैसे कि अभी उपासनी जी ने कहा आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसका बड़ी जल्दी निवारण होता है।
जैसे ये बहुत दूर है और मान लीजिए वहां से चिट्ठी लिखते हैं तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं?
हाँ लिख सकते हैं, पहुंचती है और उनको देखा जाता है, चिट्ठियों का जवाब दिया जाता है, उस पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाता है।
और जो
मोबाइल ऐप
जो है उससे भी आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं वहां पर। प्रत्येक देशवासी को मेरे ख्याल से ये सोचने पर जरूर ये सोचना चाहिए और कुछ वक्त देना चाहिए कि मैं देश के संविधान और कानून की इज्जत के साथ अपने राष्ट्र के लिए कितना समय दे सकता हूं और क्या क्या कर सकता हूं, ये सोचना बहुत जरूरी है। नंदकिशोर है हमारे अगले श्रोता दिल्ली से। हेलो नंदकिशोरी जी।
हाँ जी मैम, नमस्कार।
नमस्कार जी, बोलिए
जी। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ।
स्वागत है आपका।
और जी मेरा सवाल यह है कि हम दृष्टिहीन भाई बहन मतलब देश के निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या कुछ है ये जरा बताने का कष्ट करें।
अरे वाह।
देखिए दृष्टिहीन होना मतलब एक अलग सी बात जरूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दृष्टिहीन लोग भी बहुत ज्यादा योगदान अपना देश के लिए कर रहे हैं। और अभी हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ जुड़े एक बच्चे ने एक ऐसा एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया जो दस्ताना है, और वो दस्ताना पहनने के बाद जो ब्रेल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा।
किसी भी किताब के ऊपर, साधारण किताब के ऊपर वो दस्ताने से हाथ फेरेगा तो पूरा सुनाई दे जाएगा कि वो उसमें क्या लिखा है।
तो ये तो दिल्ली में है, ये तो स्वयं भी आ सकते हैं नेहरू युवा केंद्र?
जी बिल्कुल आ सकते हैं। और अभी अगले वर्ष से हम जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग बेटे बेटियां हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम भी हम शुरू करने वाले हैं।
जी रविराज दिल्ली से अगले श्रोता है। रवि जी बोलिए।
नमस्कार मैम।
नमस्कार।
मेरा सवाल यह मैडम कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं नई जैसे मुद्रा योजना स्टार्टअप इंडिया लोन लेकर के हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? हाँ व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है
व्यवसाय कर सकते हैं लेकिन जिन्होंने बीटेक किया है वैसे नहीं मैकेनिकल से बीटेक किया जी इसमें इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने की।
ठीक है
नोट करने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन 2015 में पास आउट हुआ अभी तक जॉब नहीं मिली इतने पैसे है ही नहीं कि गेट वगैरह का कोचिंग करके करके
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इतने निराशा भरे स्वर में क्यों बोल रहे हैं?
रविराज जी आपने मैकेनिकल से
बीटेक किया वहाँ पे प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं दी गई बहुत कम ना बराबर ऐसे ऐसे कॉलेज बहुत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन ऐसे कॉलेज पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट की क्या योजना है प्लस हम जैसे लोगों के लिए हम लोग रोजगार पा सके हमारे लिए गवर्नमेंट क्या।
देखिए पहले तो निराशा दूर कर दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए। बाकी हमारे दोनों विशेषज्ञ हैं वो आपके लिए कुछ न कुछ 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 ऐसी उपाय कुछ खोजेंगे।
मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं रवि जी कि आपने बिल गेट्स का नाम सुना है स्टीव जॉब्स का नाम सुना है दोनों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दोनों ने ऐसी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की जिसको कि आज पूरा देश मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। तो पढ़ाई थोड़ी कम हो गई या ज्यादा हो गई वो विशेष नहीं है। मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें आईआईएम किया हुआ बच्चा आईआईएम या आईआईटी पढ़ा हुआ बच्चा कम तनख्वाह ले रहा है और छोटे कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए या कौन से कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की या कितनी शिक्षा प्राप्त की। इम्पॉर्टेंट ये है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें अच्छे काम के प्रति अपना दिमाग लगाएं और पूरी पैशन से मेहनत से काम करें। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम हर प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं और आज पूरी इंडस्ट्री पूरी गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर हो ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो सोल्यूशन निकाल सकता है।
देखिए आप तो दिल्ली रहते हैं और दिल्ली के आसपास गुड़गांव में गाजियाबाद नोएडा में ऐसे बहुत से स्टार्टअप खोले हैं आपके ही इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थियों ने जो कहीं बाहर से आए हैं बाहर देश में नौकरी करते थे और आपके जैसे लोगों को ही रख रहे हैं वो और उनको आपका कोई मैकेनिकल में आपने मैकेनिकल में किया है लेकिन मैकेनिकल में भी किसी पार्ट में आपने थोड़ा सा ज्यादा रुचि दिखाई है तो वो उसको डेवलप करते हैं। थोड़ा सर्च करिए अपने आप कंप्यूटर पर बैठिए किसी साइबर कैफे में जाइए अपने घर में हो तो आसपास के स्टार्टअप को सर्च करिए। गुड़गांव में नोएडा में ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो नौजवान इंजीनियर्स ने शुरू किए हैं और उनके यहां 200-250 ऐसे विद्यार्थी हैं और अनेक हर तरह का काम उनके पास है। आप जाइए अपने स्किल को थोड़ा डेवलप कीजिए जो आपने पढ़ा है उसको अच्छा करिए उसके बाद आपको अच्छी कंपनी में अप्लाई करने में सहूलियत होगी।
जी
मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं आज अभी इमर्जिंग फील्ड जो है वो डेटा एनालिटिक्स का है और डेटा एनालिटिक्स बहुत आसान कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है और उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कोशिश करके देखें मुझे यकीन है आपको फायदा होगा
आपको जरूर सफलता मिलेगी हमारी शुभकामनाएं। पटना से अभिषेक कुमार है हमारे साथ। अभिषेक जी हेलो अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो बोलना शुरू करें। नहीं शायद नहीं सुन पा रहे हम आप नेहरू युवा केंद्र के बारे में जो बता रहे थे उसमें जो आपने कहा कि हर जिले में है नेहरू युवा केंद्र और 7 बच्चे जो हैं 29 साल तक के युवा जो हैं कितने उम्र से
15 साल की उम्र से
29 साल की उम्र तक के 7 बच्चे 7 युवा मिलकर के एक क्लब बना सकते हैं और उसे पंजीकृत करा सकते हैं नेहरू युवा केंद्र में। उसके बाद तो आप फिर देखेंगे उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है।
बिल्कुल उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं उनके माध्यम से हम अलग अलग कार्यक्रम उनको शामिल करते हैं और हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं युवा क्लब के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। और एक और खुशी की बात यह है कि पंजीकरण में पहले थोड़ा ज्यादा धन लगता था थोड़ी कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 1200 ऐसे रुपए लगते थे उसको पंजीकरण कराने के लिए। अभी मैंने हाल ही में सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और ज्यादातर मुख्यमंत्री राजी हो गए हैं कि उसकी जो पंजीकरण की राशि है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए कहीं कहीं 50 रूपये तक करने की बात हो गई है तो बहुत आसान आप सबके लिए हो रहा है। आप जरूर आइए आपका स्वागत है।
संगठन में शक्ति है। दरभंगा बिहार से शंकर झा हमारे अगले श्रोता हैं। शंकर जी
जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जो व्यवस्था चलाने में राजनीतिक पार्टियों की अहम भूमिका होती है, ठीक है, और बिना राजनीति से राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है, तो उसमें युवाओं की कितनी भूमिका है आज के राजनीतिक परिदृश्य में, और उस युवाओं की जो महत्व है वो जो केंद्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो कितना महत्व दे रहे हैं, कोई खास प्रोग्राम चला रहे हैं क्या, चलाना चाहिए?
देखिए, दोनों बड़ी जो राष्ट्रीय दल हैं, दो चार जो भी बड़े राष्ट्रीय दल हैं जिनकी भारत भर में उपस्थिति है, उनके अपने युवा संगठन भी हैं। भाजपा का है, कांग्रेस का है, और भी दलों का युवा संगठन है, जिसके जरिए वो युवाओं को सक्रिय करते हैं राजनीति में। लेकिन जो राजनीति में युवा जाते हैं वो अपना काम धंधा भी करते हैं, उसके बाद वो राजनीति में जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मत मानिए, अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो आप पहले अपना पैर जमाइए। राजनीति से रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए, ये मत सोच के राजनीति में जाइए कि ये रोजी रोटी चलाने का जरिया है। लेकिन आप अगर राजनीति के माध्यम से समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो आप जरूर जाइए इन दलों के, और अपने युवा विंग्स हैं, दोनों बड़े दलों के हैं और क्षेत्रीय दलों के भी हैं, उनमें काम करिए अपनी रुचि के हिसाब से और आगे बढ़िए।
लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना जरूरी है।
निश्चित ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। राजनीति रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है, वो लोगों की सेवा करने का साधन है।
मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि हमारे अभी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस प्रकार से छोटी सी एंट्री ली उन्होंने, और उस छोटी सी एंट्री में किस तरह से सेवा भाव के साथ उन्होंने नीचे पहले ऐसे कार्यकर्ता काम किया, और उस कार्यकर्ता के लेवल से आज वो प्रधानमंत्री तक अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से पहुंचे।
जी जी, उदाहरण है सामने। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से राहुल कुमार हैं। हेलो राहुल जी।
यस मैम
जी, बोलिए।
तो मेरा प्रणाम।
नमस्ते, बोलिए।
मैम मेरा सवाल ये है कि जो नेहरू युवा केंद्र सर बता रहे हैं, मैम मतलब जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको मतलब शिक्षा नहीं, जो एजुकेशन से बहुत नीचे है मैम, हाँ उन तक मैम ये कैसे बात पहुंचाई जाए कि वहाँ युवा केंद्र है, ये है, और मतलब जो संविधान में मूल कर्तव्य है।
हाँ देखिए, अभी रेडियो जो सुन रहे हैं ना बच्चे या युवा, जो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी ये जागरूकता फैला सकते हैं, और जो रेडियो पे सुन रहे हैं वो दिलावर जी से हम पूछते हैं कि वो कैसे काम आगे करे।
बेटे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा हर एक जिले के अंदर हमारे पास दफ्तर है, जिले के नीचे ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक के अंदर दो युवा हमारे वॉलंटियर हैं जो काम करते हैं, और हर साल ये गांव गांव जाकर के ये सूचना सबको देते हैं, और गांव गांव में क्लब बनाने की इनकी जिम्मेवारी है, और हर साल ये क्लब बनाने का हमारा कार्यक्रम रहता है, उसके लिए हम एक छोटी धनराशि इनको सबको देते हैं, और उसके माध्यम से गांव गांव में ये खबर पहुंचाई जाती है। और हमारा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है ये ऐसे ही ग्रामीण और जो नॉन स्टूडेंट कैटेगरी के बच्चे हैं उन पे ही ज्यादा फोकस करता है।
और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए 12 से 16 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में एक नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
एक बहुत ही नए तरीके का राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 तारीख से 16 तारीख को ग्रेटर नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर चलाया जाएगा। बिल्कुल नया तरीके से इस फेस्टिवल को चलाया जा रहा है। इस बार जो विजन है हमारे माननीय मंत्री कल राजवर्धन सिंह राठौर जी का, उसके मुताबिक है, और उसके अंदर पिछली बार से अगर जो युवा आएंगे नए देखेंगे, सारे एम्पावरमेंट सेशंस हैं, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी युवा संसद होगी और बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को होगा,
उसका लाभ भी आप ले सकते हैं, और युवा मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, उसको भी संपर्क कर सकते हैं। युवा पीढ़ी राष्ट्र का आधार है, और जिस तरह कोई भवन बिना किसी नींव के नहीं टिक सकता है, उसी तरह कोई भी राष्ट्र युवा शक्ति के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। तो अपनी शक्ति को पहचाने, ऊर्जा को पहचाने, और उसे राष्ट्र के निर्माण की तरफ लगाएं। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के डीजी मेजर जनरल दिलावर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर लिखकर भेजें। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in अवश्य देखें। अगले सोमवार आपसे फिर मुलाकात होगी। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
जय हिंद, जय युवा। जय हिंद, जय युवा।